नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम छुलो आसमान में आपसे रूबरू होंगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जीएडी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री नंद कुमार जी। इनसे बातचीत करेंगे नजारा टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर IBG के प्रेसिडेंट फॉर द रिपब्लिक ऑफ माली के ऑनररी काउंसिल विकास मित्तर सेन।
आज हमारे साथ हैं नंद कुमार जी, ये हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। वेलकम नंद कुमार जी, आपने टाइम निकाला आज हमारे लिए।
धन्यवाद विकास जी, और मुझे यहाँ आने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
ये बताइए, आपके प्रोफाइल में आप पूरे लाइफ करीब करीब एजुकेशनिस्ट रहे हैं, खुद भी एजुकेटेड हैं काफ़ी, तो इतनी बड़ी प्रोफेशन थी आपने कैसे प्राप्त करी?
ये एक्चुअली मैं शिक्षा के क्षेत्र में घुसता चला गया, और वैसे मेरी स्कूलिंग तो सरकारी स्कूल में हिंदी माध्यम के स्कूल में हुआ, अभी छत्तीसगढ़ है वहाँ पर,
छत्तीसगढ़
जो पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था। और जब मेरे गांव से ही दो लोग इंजीनियर बन रहे थे तो मुझे लगा कि मैं भी इंजीनियर बनूं।
ओके।
और फिर वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पता चला कि IAS भी होते हैं, तो मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा दिया और मैं सेलेक्ट भी हो गया, मुझे महाराष्ट्र कैडर मिला है। तो जिस शिक्षा ने मेरी जिंदगी को इस ऊंचाई तक लाया है, वही शिक्षा बाकी के लोगों की, मेरे देश के लोगों की
आप बांट रहे हैं,
हाँ, कि ऊंचाई तक ले जाएगा, इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में घुस गया।
अब बहुत छोटे विलेज से आए हैं, वहाँ पे तो एजुकेशन भी नहीं रहा होगा, कितने लोग का विलेज था, 10,000 या कम?
मेरा गांव छोटा ही था तब, तो उस समय 1,500 जनसंख्या थी
बस,
और गांव में 8वीं तक की स्कूल थी। गांव में रोड तो अभी छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के बाद बना, और ऐसा एक बार हुआ कि मेरे पिताजी थे किसान और केवल धान उगाते थे, और एक बार बहुत जोर का अकाल पड़ा 1974 में, तो मेरे पिताजी ने सभी अपने बच्चों को, मेरे भाइयों को बुला के कहा कि इस साल हम लोग साल भर खा पाएंगे, इतना भी नहीं हुआ है तो क्या करें। तो मेरे सबसे बड़े भाई ने कहा कि हम लोग एक दुकान खोलेंगे, किराना दुकान,
वहीं पे,
वो किसी और गांव में।
अच्छा।
तो फिर चूंकि मैं स्कूल में होशियार था तो मुझे कहा कि तुम चलो दुकान चलाने, तो हम साथ में मैं चला गया, और फिर वहाँ पे बड़ा एक स्कूल था, और वो गांव 2,500 पॉपुलेशन का था, तो उससे 5 किलोमीटर दूर में एक स्कूल था, वहाँ पे मेरी शिक्षा हो गई, और इस तरीके से मैं शिक्षा में आगे बढ़ गया।
तो आपका अंदरूनी जो चाहत थी वो एजुकेशन में थी, आप आगे भी जो कुछ भी करे आपने वही फील्ड में करा है।
अभी गांव में थे और किसानी कर रहे थे और जब बहुत से ज्यादा दुकानी कर रहे थे तो उसमें बहुत ज्यादा भविष्य दिखता नहीं था, तो अच्छा एजुकेट हो गए तो उस जमाने में इंजीनियर डॉक्टर बनना, और अभी भी लोगों में है वो क्रेज, तो इंजीनियर बन के मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी ऐसा मुझे लगा, तो मैंने माँ बाप से कह के उसके लिए पढ़ाई शुरू कर दी, और इंजीनियरिंग कॉलेज में पता चला कि IAS नाम की भी कोई चीज होती है, तो फिर उसकी तैयारी की, तो IAS भी बन गए। अब जब IAS बन गए तो अब हम अपनी जिंदगी तो संवार लिए हैं, दूसरों की जिंदगी संवारने का एक अच्छा मौका था, उसका उपयोग किया, और इसलिए मैंने जिंदगी भर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और अच्छे परिणाम भी आए हैं, और उसके लिए मुझे बहुत खुशी भी है।
तो इतना आपने करा है एजुकेशन के लिए, आपको तो अवार्ड्स मिलने चाहिए, मिले ही होंगे,
हाँ,
गवर्नमेंट के या प्राइवेट या एजुकेशन फील्ड से, क्योंकि इतना डेडिकेशन मैंने अभी तक देखा नहीं है एजुकेशन के लिए।
और इसीलिए विकास जी मैं यहाँ पे काफी फिलोसॉफिकल बात कहना चाहूंगा।
जरूर जरूर।
अवार्ड कोई और मनुष्य कैसे देगा मुझको, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ और वो भी मनुष्य है, तो अवार्ड तो मैं, मुझे यदि कोई मनुष्य देगा तो वो केवल बड़े पद में बैठे हुए नहीं, जो मेरे विभाग से लाभ कमाते हैं। तो यदि शिक्षा के क्षेत्र में हूँ तो दूर दराज के गाँव में रहने वाले बच्चे सीख जाएं, आदिवासी और पिछड़े हुए वर्गों के लोगों के बच्चे सीख जाएं, गरीबों के बच्चे सीख जाएं, ये बड़ा अवार्ड है मेरे लिए, और मैं उसी के हिसाब से काम किया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो असर नाम का एक रिपोर्ट आता है हर 2 साल में, और ये सरकारी रिपोर्ट नहीं होता है, ये थर्ड पार्टी होता है।
अच्छा।
थर्ड पार्टी होता है। तो 2014 और 2018 के बीच में जो विकास हुआ अन्य राज्यों की तुलना में 8-10 गुना हुआ है, और वो ऐसा अवार्ड है जो और कोई कैसे दे सकता है। तो हर साल 5वीं कक्षा के 2.5 लाख अधिक बच्चों को गणित बेटर आ गया, 2,80,000 अधिक, और ये हर साल इतना होगा, अधिक बच्चों को पढ़ना आ गया, तो ऐसी बातें हुई हैं, और उससे मुझको जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। वही।
पिघलते तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जहां पिघलते ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते
ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो यही कहीं हो
किसी राह भी निकलते हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते
सहे हम दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
ये कहा
जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।
किसी राह भी निकलते हो, हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। ये
सहें हम, दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
ये कहा
सो अवार्ड पे फिर जाता हूँ. अवार्ड का मतलब ये नहीं है कि एक फिजिकल चीज आपको हाथ में दी जाए, ये रिकॉग्निशन है. अगर आप इतना काम कर रहे हैं और स्पेशली क्योंकि आप छोटे गांव से आते हैं, आपका ध्यान ज्यादा उस तरफ है कि वहां के बच्चों को एजुकेट करें.
हाँ, मैं जिस स्थिति से आया, मैं बहुत अमीरी से आया ऐसा तो नहीं कह सकते. और फिर गरीब लोगों के अमीर बनने के रास्ते क्या है, तो शिक्षा के अलावा और कोई रास्ता मुझे दिखता नहीं है, है ना. जिस शिक्षा ने मुझको इतना आगे लाया, वही शिक्षा दूसरों को भी आगे लाएगा. हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं और लगभग 40 करोड़ बच्चे अभी स्कूल और कॉलेज में हैं. तो उन बच्चों की शिक्षा अच्छी हो जाए तो हमारा देश विकसित हो जाएगा. फिर वो छोटे गांव में रहने वाला हो, बड़े शहर में रहने वाला हो, मुंबई के स्लम का हो या छोटे गांव के आदिवासी विभाग के बस्ती का, बाड़ी बस्ती का हो. तो विकास का एक मार्ग ही है, क्योंकि मनुष्य का काम, मनुष्य का सब कुछ अपने बुद्धि से निर्णय लेता है. बुद्धि में बेहतर निर्णय की क्षमता तभी आएगी जब वो अच्छे शिक्षित होगा. इसलिए मैंने उधर ज्यादा ध्यान दिया.
तो इंडिया का अपलिफ्टमेंट ऐसा ही हो रहा है, ओनली थ्रू एजुकेशन
होगा.
ये है इंडिया का बदलाव, जो न्यू इंडिया बोलते हैं. ये हो रहा है कि जो भी काम कर रहा है कोई आदमी, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो जो भी उनको संवेदिता मिलती है उसमें चले जाते हैं.
और इसीलिए भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून लाया है,
फ्री आई थिंक एजुकेशन है
या फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. तो उसका लाभ देश के सभी लोगों को उठाना चाहिए. और एक भी बच्चा यदि स्कूल जाने से नानुकुर करता है तो उसके पेरेंट उसको कैसे भी करके स्कूल भेजे, सीखेगा तो आगे बढ़ेगा और पूरी परिवार आगे बढ़ जाएगी. हमने ऐसे भी बहुत सारे परिवार देखे हैं जो बोलते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमारा बच्चा पढ़ के क्या करेगा. आपका बच्चा पढ़ के आपके परिवार को अमीर बनाएगा, इसलिए पढ़ाइए.
तो ये फिर भी बॉम्बे जैसे शहरों में तो एजुकेशन हो ही जाता है, लेकिन जो स्मॉल प्लेसेस हैं, जो गाँव है, वहां पे कौन समझाएगा पेरेंट्स को? उनको तो ऐसा लगता है कि हमारा काम चल रहा है, यही करते रहेगा.
विकास जी, इसमें एक मेरे इस समय में, पिछले चार साल जब मैं शिक्षा सचिव था महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, तो इसमें बाल रक्षक नाम की एक क्रांति लाई हम लोगों ने.
ये क्या चीज है?
ये बाल रक्षक में क्या है कि हमारे शिक्षक, हाँ, बाल हमारे शिक्षक जो हैं ग्रामीण भाग में, जो जिला परिषद स्कूल में सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, वो पहले से कुछ कुछ मेहनत करते ही रहते हैं. पेरेंट को जाके कन्विंस करते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजो. इनफैक्ट मुझे भी ऐसा ही करके स्कूल में लाया गया. अच्छा. था मेरे पिताजी को उस समय के टीचर ने, तो मेरे, मैं सभी टीचर 7.5 लाख टीचर है महाराष्ट्र में.
अच्छा.
उनको मैंने कहा कि तुम ये काम करते ही हो, लेकिन जो ज्यादा ऐसा करता है उनको हम बाल रक्षक बोलेंगे. और उस बच्चे का यदि तुम नहीं हो तो और कोई नहीं है, तो ऐसा सोच के काम करके देखो. तो मैं, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले चार साल में सरकारी स्कूल में, महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी, जो कि पिछले 30 साल से लगातार कम हो रही थी, वो 1 लाख से बढ़ गई. और प्राइवेट स्कूलों में बढ़ रही थी जो संख्या, वो 50,000 से कम हो गई.
अच्छा.
तो जो बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, जिसके जो गन्ना के कटाई के लिए चले जाते हैं जिनके पेरेंट, वो सब बच्चे भी अब स्कूल आ गए और वो सीख रहे हैं. और वो मुझको तो उनका भविष्य उज्ज्वल लगता है.
तो 7.25 लाख टीचर्स आप बता रहे हैं,
yes.
इनके लिए कंपलसरी नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को कि एक साल में एक बच्चे को तो लेकर आओ घर से निकाल के पढ़ाई के लिए, वैसा नहीं करके कोई उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि जब भी आप बच्चे को लेकर आओ एक तो आपको एक टिक मार्क मिलेगा, किसी भी तरीके का अवार्ड, नॉट नेसेसरली मॉनिटरी, बट उनके फ्यूचर के लिए एक प्रोफाइल ऐसा बनाया जाए टीचर्स का कि ये भी इन्होंने करा।
ये होना चाहिए लेकिन समहाउ हो नहीं रहा था, लेकिन अब हम लोगों ने उनको कहा कि यदि तुम बच्चों को लाने लगे तो हम आपको बाल रक्षक बोलेंगे, तो उसी में बहुत खुश हो गए हमारे शिक्षक। और परिणाम है कि जैसे जालना जैसे जिला है, औरंगाबाद है, बीड है, इन जिलों में शाला त्यागी बच्चे बहुत थे, अब वो शून्य पे आ गया। अभी 2-4 दिन पहले मैं गोंदिया जिले के शिक्षण अधिकारी से बात कर रहा था तो उसने कहा कि सर हमने डिक्लेयर कर दिया, अच्छा? कि हमारे यहाँ एक भी शाला त्यागी बच्चा नहीं है। तो मैंने बोला कि ये डिक्लेयर कर दिया तो जांचोगे कैसे, तो उनने बोला कि आपने सरल करके एक जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया ना उसमें दिखता है कि एक भी बच्चा स्कूल के बाहर नहीं है, तो कंप्यूटर के उपयोग से हम लोग वो मॉनिटर कर रहे हैं और टीचर को मोटिवेट कर दिया कि तुम तो भाई बाल रक्षक हो। तो बॉम्बे में ऐसा हुआ कि एक लड़की भीख मांगती थी, तो चौकों में आप देखे होंगे बहुत बार है ना भीख मांगती है, तो हमारे बाल रक्षक पीछे लग गए, ये भीख मांग रही है हम इसको स्कूल में डालेंगे। तो पता चला कि उसका कोई मामा हूं बोलता था, वो उसको भीख मंगवाता था और रात में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता था।
ओ गॉड।
तो रात के 2 बजे तक पुलिस स्टेशन में लगे रहे हमारे बाल रक्षक और उस बच्चे को मामा के चंगुल से छुटाया, पुलिस की मदद लिया और अब वो बच्ची स्कूल में पढ़ रही है। इस तरीके से काम कर रहे हैं।
मतलब अगर ये एजुकेशन फ्री हो गया है इन द सेंस कोई भी अनएजुकेटेड नहीं रहा एटलीस्ट डूइंग प्राइमरी स्कूल, तो इसका और बहुत चर्चा होनी चाहिए। हमको नहीं पता था ये बात।
नहीं, बहुत चर्चा होनी चाहिए,
ऐसा चल रहा है सब गांव में।
और विकास जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब आईएएस की तैयारी कर रहा था तो भारत देश का जो पर कैपिटा इनकम था वो $300 था, मैं डॉलर टर्म पे बात करूंगा, $300 पर हेड था पर ईयर, अभी वो $1700 पर ईयर पर हेड है। और मैंने अभी अभी एक पुस्तक पढ़ी द फैक्टफुलनेस करके, उस पुस्तक के हिसाब से देखें तो हमारा जिस दिन ये $1600 है पर ईयर तो उसको पर डे में काउंट करें तो वो एक $5 के लगभग पर डे आता है एवरेज। ये 5 है वो 32 के ऊपर जाएगा, तो हम जो 1 था वहां से 5 में आ गए, 5 गुना में आ गए, यही 5 या 6 गुना और हुआ
जाए।
तो ऐसे देश हैं, ऐसे देश हैं इसी दुनिया में, इसी पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे देश हैं। उस देश के हर व्यक्ति के पास खुद का कार है। अमेरिका का उदाहरण लें, 1000 जनसंख्या के पीछे 821 कारें हैं, भारत देश में भी 22 कारें हैं। तो आने वाले 25-30 साल में हर आदमी के पास कार होगा भारत देश में, वो दिन आने वाले, हर किसी के पास कार वो खरीद सकते हैं यदि चाहें तो, वो दिन आने वाला है और हमारा देश उस दिशा में आगे बढ़े और वो सब शिक्षा के कारण होगा।
वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
आपने एडल्ट लिटरेसी मूवमेंट में भी काफी काम करा है और उसकी भी बहुत जरूरत है बिकॉज़ मेरा कहना हमेशा ये रहा है कि लेडीज को एजुकेट करो मैं बहुत शुरू से विमेन एम्पावरमेंट में काम करता हूं विदाउट सेइंग दैट मेरे कार्ड पे पहले लिखा रहता था और ये टर्म जो है ये मैंने कॉइन करा था एजुकेट द गर्ल चाइल्ड
वाओ
30 साल पहले मैंने शुरू
अच्छा,
करा था
और अभी
मेरे कार्ड विजिटिंग कार्ड पे भी लिखा रहता था मेरे कंपनी के लेटर हेड पे भी लिखा रहता था प्रिंटेड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड
क्या बहुत बढ़िया बात
ये तो अभी गवर्नमेंट यूज कर रही है
अभी गवर्नमेंट यूज कर रही है हर जगह लिखा रहता है
शुरुआत मैंने करी थी
वाओ वाओ
मैंने कुछ बच्चों को एजुकेट करना भी शुरू करा था हम वर्ली में रहते थे तो वर्ली के जो स्लम्स हैं वहाँ पे मैंने ऐलान करा था कि मैं कंप्लीट एजुकेशन करूंगा तो 16 बच्चे आए थे
अच्छा
बंद इसलिए करना पड़ा एंड उसको मैं बढ़ाते जा रहा था मेरा टारगेट था कि 100 पे लेके जाऊंगा लेकिन हर शाम वो 16 में से एक मदर या फादर मेरे घर पे खड़ा रहता था कि हमको घर में आज ये तकलीफ हो गई हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो मैंने इनको बोला देखो मैंने सिर्फ आपका बच्चों का एजुकेशन का लिए लिया है आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपका है ये मुझे इसके लिए मेरे पास मत आओ बट वो बंद ही नहीं होता था फाइनली मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा वो बच्चों को मैं 10th तक ले गया और फिर छोड़ दिया उसके बाद और ऐड नहीं करा तो ये भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती है इंडिया में
तो गवर्नमेंट की बात कहें तो गवर्नमेंट बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहता है उनके पेरेंट के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहता है बस डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं तो और इसीलिए गवर्नमेंट का ज्यादा प्रभावी होना बहुत आवश्यक है नहीं तो इंडिविजुअल लोग कितना कर पाएंगे अब पिछले साल का ही बजट देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कूली शिक्षा का 51,000 करोड़ रुपए था
51,000 करोड़ डिपार्टमेंट
तो
ये भी पता नहीं है
गवर्नमेंट इतना पैसा लगाते रहती है और उसके बाद भी यदि बच्चे छूट जाते हैं तो ये बड़ी गलती है और ये समाज को गवर्नमेंट के पीछे लग के ये काम करा ही लेना चाहिए तो मैंने तो चूंकि मैं खुद ही चाहता हूँ हर बच्चा सीखे जब मेरी लाइफ एजुकेशन अच्छी हो सकती है दूसरों की होगी तो इसलिए मैं पीछे लग गया और एक भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे तो कंप्यूटर प्रोग्राम बना दिया उसके लिए टीचर को मोटिवेट करने के लिए बाल रक्षक बना दिया और आपने एडल्ट लिटरेसी के बारे में कुछ प्रश्न कहा था तो एक तो स्कूल के उम्र के हैं बच्चे तभी सीख जाए अब तो शिक्षा का अधिकार कानून भी है
तो चेंज हो गया
लेकिन पहले समय के जो लोग बच गए हैं उनको भी हमने टारगेट किया तो उनको गवर्नमेंट के प्रोग्राम के हिसाब से उनको पढ़ना लिखना कुछ पुस्तक से सिखा दो प्राइमर से और थोड़ा गणित सिखा दो वो हमने सिखाया और जब और ये मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत जोरदार काम किया तो फिर अब ये लोग बोलने लगे और हमको राष्ट्रपति हाथों पुरस्कार भी मिला
अच्छा
हाँ एडल्ट लिटरेसी का फिर मैं बोला ये लोग पढ़ते हैं तो फिर इनके लिए पुस्तक कहाँ है पढ़ने के लिए अब तो शुरू में एक दो प्राइमर दिए तो पढ़ लिए तो हमने बहुत सारी पुस्तकों की लाइब्रेरी बनाई उनके हर गांव में और फिर उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी हम पुस्तक क्यों पढ़ें अच्छा? ऐसा और फिर उसको पढ़ने के बाद हर किसी को लगता है कि यहाँ पुस्तक पढ़ने के बहुत फायदे हैं और फिर वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा वो रिकॉर्ड भी बना तो थैंक यू वेरी मच इस तरीके से काम करने की जरूरत थी और हमने किया और परिणाम भी मिले उसके और मुझे बहुत खुशी है कि इतनी तेजी से परिणाम आए और आजकल तो व्हाट्सएप मोबाइल और अलग अलग ऐप आ जाने कारण हर चीज का बहुत तेजी से आप फैलाव कर सकते हैं और उसका परिणाम भी आता है
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही चल दिल के सहारे करती है मंज़िल तुझको ये देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के ओ राही
हमारे साथ हैं नंद कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, स्टिल ऑन दी एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। मेरा कहना हमेशा ये था कि मदर्स को एजुकेट करो, बच्चों को तो करो ही, लेकिन मदर्स जब एजुकेट होती हैं, घर अच्छी तरह संभालते हैं, उनको क्लेनलीनेस का समझ में आता है, राइट और रॉन्ग वे ऑफ रनिंग समझ में आ जाता है। सो ये आप ऑलरेडी कर रहे हैं एडल्ट लिटरेसी में।
हाँ, और जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा का जब फैलाव हुआ तो लोगों ने अपने बेटों को पहले भेजा, बेटियों को स्कूल भेजने के लिए।
इंडिया में यही चल रहा था, लेकिन अभी चेंज हो गया है जहां तक मेरा ख्याल है।
अब तो खैर हर बच्चा
कंपलसरी हो गया है,
लड़का हो या लड़की हो, बच्चा बच्चा होता है और ये मनुष्य का बच्चा है ना। लड़का लड़की हो जाना एक शारीरिक बनावट में फर्क है और एक नेचर की आवश्यकता है कि दोनों मिलकर बच्चे पैदा करने, उसके अलावा मनुष्य हैं वो दोनों। तो उस हिसाब से उसको समता का सिद्धांत बोलते हैं, उस हिसाब से हमने काम किया। तो महाराष्ट्र में तो लड़का लड़की ऐसा अलग इशू नहीं है, लेकिन और अब के जमाने में किसी भी राज्य में मेरे ख्याल से नहीं होगा, लेकिन पहले जो हुआ आज से 15-20 साल पहले, उस समय की बहुत सारी महिलाएं निरक्षर रह गई हैं, तो उनके लिए अलग से प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। और आपने एकदम सही कहा कि परिवार वो संभालती है, जो मदर टंग की जो बात कहते हैं ना। अभी बॉम्बे में हम लोग एक परिवार में गए थे, तो उसमें माँ मराठी थी और
फादर
तेलुगु, और उनकी दो लड़कियां दोनों मराठी बोल रही हैं। तो हमने बोला कि यार ये तेलुगु इनको आता है कि नहीं, तो उन्होंने कहा तेलुगु इनको बिल्कुल नहीं आता है। तो हम बोलने लगे तुम बाप हो सिखाओ थोड़ा तेलुगु। तो फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं, मदर टंग इसीलिए बोलते हैं, माँ की भाषा सीखते बच्चे। तो माँ यदि लिखी पढ़ी नहीं रही, माँ को परिवार के निर्णय यदि नहीं लेने दिए गए, तो परिवार काफी घाटे में रहता है, और इसलिए महिलाओं का सीखना बहुत जरूरी है।
तो इंडिया में तो पहले यही बोलते थे ना, जो लड़की है उसको तो क्या है, उसको तो अभी शादी करके जाना
दूसरे
है,
दूसरे के घर की संपत्ति है, बोलते
घर की संपत्ति, हमको क्या रिस्पांसिबिलिटी है, बेटे को सिखाओ तो हमारा घर आगे चलेगा।
हाँ, लेकिन उसकी भी वाइफ तो किसी और घर से आएगी और वो बिना सीखे
नहीं करते ना उसके बाद।
ये तो समझने की जरूरत है, और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि यदि आप अपनी बेटी को नहीं पढ़ाओगे और दूसरा भी अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएगा, तो आपकी बहुत निरक्षर आएगी। तो इससे अच्छा ये है कि इतना सेल्फिश मत बनो।
ऐसा ही होता था, इनफैक्ट लोगों को डर लगता है कि ज्यादा एजुकेटेड डॉटर इन लॉ आ जाए तो हमारे घर को टेक ओवर कर लेगी,
और करना भी
हम अनएजुकेटेड हैं तो ऐसे आकर वही ले जाएगी पूरा घर, वही चलाएगी, हमारा तो कुछ कहना रहेगा ही नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इंडिया का तो पुराना कल्चर है, इसको चेंज करने की जरूरत है, और हो रहा भी है,
बहुत तेजी से चेंज हो रहा है,
हो रहा भी है।
और अभी
आपके
तो
जैसे लोग हैं, यू नो इट्स इन गुड हैंड्स।
नहीं, आप हम तो हैं ही और आप भी हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि टेक्नोलॉजी आ गया। तो मैंने देखा है जैसे अब हमारे भी घर में फैमिली ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, और उसमें मैं देख रहा हूँ कि हमारी भाभियां और हमारी बहुएं जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सबके सब व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो जोक्स स्टोरी और आते गाने आते हैं वो सब कुछ सुनते रहते हैं। पहले के जमाने में पुस्तक हाथ में लेके कोई पढ़ता नहीं था। तो अभी क्या हुआ, हमने जालना जिले में एडल्ट लिटरेसी के लिए हमने ये पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराया कि पुराने तरीके से इन एडल्ट लोगों को पढ़ाना है या कोई नया तरीका होगा, और क्या ये वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। तो उन एडल्ट लोगों ने बोला कि हमको तो मोबाइल सिखा दो आप तो उनका डिमांड था मोबाइल सिखाओ। तो मैंने कहा मोबाइल सिखाओ और मोबाइल के थ्रू पढ़ना सिखा दो।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
हमारे साथ हैं नंद कुमार जी, वर्किंग एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन दी जीएडी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये आपने दो बार जालना बोला है, मुझे उससे याद आया कि करीब 30-35 साल पहले मैं एक टेक्सटाइल मिल चलाता था। एक बार गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लोग आए थे कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में दे हैड सेट अप 8 यूनिट्स इन जालना, बीड और सब बंद पड़ गए थे। तो मेरे को हैंड ओवर करा था।
अच्छा।
वो सारी यूनिट चलाने के लिए।
अच्छा।
हर यूनिट में 300 आदमी काम करते थे, तो काफी साल तक मैं चला हूँ, मैं गया हूँ वहाँ पर।
वाओ।
मैं हर 15 दिन से इसमें से एक जगह पहुँच जाता था। हमारे लोग थे तो वो सब जगह देखी हुई है मेरी डिटेल में। तो एजुकेशन में भी लेडीज का हमने काम करा था। मैं कुछ गारमेंट यूनिट्स चलाता था एक्सपोर्ट की।
अच्छा।
तो एक यूनिट ऐसे बनाई थी उसमें बॉम्बे में ही, जिसमें सिर्फ महिला काम करती थी उनके, बट उसी में हमने एक क्रेश भी चालू करा था। और जब वो लेडीज सुबह आती थी काम करने 8 बजे, तो उनको फ्री ब्रेकफास्ट दिया जाता था ताकि उनको घर पे बैठ के नहीं बनाना पड़े।
अच्छा।
बच्चों को रखने के लिए पूरा वो रहता था, और फिर उनको हम बच्चों को एजुकेट करने के लिए भेजते थे। डिपेंडिंग के भी 3 साल का हो गया तो ये बाजू के स्कूल में जाना है, फिर आप, शाम को लेकर
आप केवल बिजनेसमैन का काम नहीं, आप हमेशा से एक सोशल एंटरप्रेन्योर के भी काम करते
मैं
रहे
तो अभी भी हूँ
और अभी भी है तो बहुत ही बढ़िया।
माय थिंकिंग इज वेरी मच डिफरेंट। पैसा तो हर एक आदमी को कमाना ही रहता है अपना खुद का जिंदगी चलाने के लिए, लेकिन वो सिर्फ वो चीज नहीं है लाइफ में, और बहुत चीजें रहती है।
सेल्फ सेटिस्फेक्शन है और दूसरों का अच्छाई करते करते यदि अपना अच्छाई करें तो विन विन,
तो अच्छा ही लगता है ना। मतलब बुरा काम करने से तो आप खुद अंदर से दब जाते हैं।
करेक्ट।
अच्छा काम करो तो आप खिलते हैं, तो वो डिफरेंस है। आपने कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में भी काम करा है, तो ये क्या होता है एग्जैक्टली? न्यूट्रिशन मींस क्या, आप फूड क्वालिटी ये सब क्या देखते हैं?
ये न्यूट्रिशन बहुत ही अलग टाइप की चीज है। मैं बता दूं कि न्यूट्रिशन कॉलेजेस भी हैं अपने, होम साइंस के कॉलेजेस भी हैं, और महाराष्ट्र में हम चूंकि बात करें तो जवाहर मोखाड़ा की बात हमेशा हर साल जुलाई महीने में
क्या है ये?
बड़ी न्यूज में रहती है। जवाहर मोखाड़ा पहले ठाणे जिले में थे, अभी पालघर जिले में है। इन दो तहसील में वारली करके ट्राइब रहते हैं,
सुना है।
और बरसात शुरू होते ही जैसे ही नया पानी आता है तो नया पानी के साथ डायरिया शुरू होता है, और यदि शरीर हृष्ट पुष्ट नहीं रहा तो वो डायरिया से लोग मरते हैं। ये दो तहसीलों में बच्चों के डेथ का न्यूज हर साल जून जुलाई में बहुत आता है। अब ये यही बच्चे क्यों मरते हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं मरते, है ना? तो इन बच्चों का न्यूट्रिशन स्ट्रेसस, जिसको कुपोषण बोलते हैं, वो अच्छा नहीं होता है। और मेरा ये मानना है कि घर में जो भी खाने का है उसको यदि ठीक तरीके से बना के और उसको टेस्टी बना के खाएं तो आदमी पेट भर खा लेता है, फिर वो आदिवासी का घर हो चाहे अमीरों का घर हो। तो अभी यदि ये बच्चे कुपोषित हैं, जो ट्राइबल बच्चे हैं, तो उनके घर में जो खाना है वो टेस्टी तरीके से नहीं बन रहा है, या तो माँ को टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, जो भी कारण होगा, तो उसको थ्रू एजुकेशन कम्युनिटी को सिखा दो, इसलिए उसको कम्युनिटी न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उससे उनके बच्चे हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, मरना बंद हो जाएगा, और उनका दिमाग अच्छा काम करेगा तो स्कूल में आएंगे और वो अच्छा सीख जाएंगे, फिर वो अमीर भी बन जाएंगे।
इसी के लिए है ना माताओं को एजुकेट करना बहुत जरूरी,
बहुत जरूरी।
आप इट्स कनेक्टेड टू योर एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम,
हर चीज में, हर चीज में जरूरी है माता।
मुझे आपसे और बहुत बातें करनी है लेकिन घड़ी बता रही है कि अपना टाइम पूरा हो गया है,
तो
थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एजुकेशन भी हुआ है, थैंक यू।
तो मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद, आकाशवाणी का भी और आपका भी विकास जी। और मैं ये मानता हूँ कि इससे पूरे समाज को फायदा होगा और इसी के लिए हम लोग हैं, धन्यवाद।
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे, राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे, काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों घर ये उजड़ते क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
श्रोताओं 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छूलो आसमान में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जीएडी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री नंद कुमार जी से की गई बातचीत। बातचीत की नजारा टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर IBG के प्रेसिडेंट फॉर द रिपब्लिक ऑफ माली के ऑनररी काउंसिल विकास मित्र सेन ने। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। निर्मिति सहायक सृष्टि जाधव और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी।